नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रियोबॉट्स कॉम्बैट रोबोट ट्यूटोरियल मार्को अंतोनियो मेजियोलारो द्वारा लिखी गई कॉम्बैट रोबोटिक्स पर एक व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक रियोबॉट्स टीम के अनुभवों पर आधारित है, जो ब्राजील की पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो की रोबोटिक प्रतियोगिता टीम है। इसका उद्देश्य केवल रोबोट की लड़ाई का रोमांच बताना नहीं, बल्कि ऐसे रेडियो नियंत्रित रोबोटों को सोचने, डिजाइन करने, बनाने और प्रतियोगिता में चलाने की इंजीनियरिंग प्रक्रिया समझाना है। पुस्तक में वजन श्रेणियों, रोबोट के प्रकारों, संरचनात्मक सामग्री, मोटरों, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार प्रणालियों जैसे विषय शामिल हैं। लगभग 900 चित्रों और टीम के रोबोटों की निर्माण रिपोर्टों के कारण इसका दृष्टिकोण अत्यंत दृश्यात्मक और अनुप्रयोग केंद्रित बनता है। यह किसी एक तैयार डिजाइन की नकल कराने के बजाय वास्तविक एरिना की चोट, झटके, नियंत्रण सीमाओं और नियमों के भीतर विश्वसनीय मशीन बनाने की सोच विकसित करती है। इसलिए यह मैकेनिकल डिजाइन, मेकाट्रॉनिक्स और प्रतिस्पर्धी रोबोट निर्माण के संगम पर स्थित पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वजन श्रेणी और स्केल के अनुसार डिजाइन निर्णय। पुस्तक का एक बुनियादी विषय यह है कि कॉम्बैट रोबोट का डिजाइन उसके वजन वर्ग से अलग करके नहीं समझा जा सकता। वजन की सीमा केवल रोबोट का अधिकतम द्रव्यमान नहीं बताती, बल्कि ऊर्जा भंडारण, कवच की मोटाई, मोटर क्षमता, बैटरी, हथियार और नियंत्रण उपकरणों के बीच कठोर बजट तय करती है। छोटा रोबोट बनाते समय किसी बड़े रोबोट के अनुपात को बस घटा देना पर्याप्त नहीं होता। आकार कम होने पर उपलब्ध आयतन, जोड़ने की जगह, पहियों का व्यास और पुर्जों की ऊष्मा निकालने की क्षमता बहुत अलग तरह से बदलती है। इसी कारण पुस्तक स्केल फैक्टर को डिजाइन की वास्तविक समस्या के रूप में रखती है। व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि हर घटक का चुनाव दूसरे घटकों पर असर डालता है। भारी कवच टिकाऊपन बढ़ा सकता है, पर त्वरण, पलटने के बाद स्वयं खड़े होने की क्षमता और हथियार के लिए बचा वजन घटा देता है। अधिक शक्तिशाली मोटर उपयोगी हो सकती है, पर उसके लिए उपयुक्त नियंत्रक, बैटरी और गियरिंग भी चाहिए। यह दृष्टि शुरुआती निर्माताओं को सूची में सबसे मजबूत पुर्जे चुनने की भूल से बचाती है। वे पहले प्रतियोगिता के नियम, वजन सीमा और रोबोट की भूमिका तय करते हैं, फिर पूरे तंत्र का संतुलित द्रव्यमान वितरण बनाते हैं। इस प्रकार डिजाइन एकीकृत इंजीनियरिंग निर्णय बनता है, अलग अलग भागों का संग्रह नहीं। दूसरा, रोबोट प्रकारों में हथियार, गतिशीलता और रणनीति का संबंध। रियोबॉट्स कॉम्बैट रोबोट ट्यूटोरियल रैमर, वेज, लिफ्टर, फ्लिपर, स्पिनर और अन्य युद्ध विन्यासों को केवल आकार के आधार पर वर्गीकृत नहीं करती। इन प्रकारों के पीछे अलग ऊर्जा स्रोत, आक्रमण कोण, नियंत्रण आवश्यकता और जोखिम होते हैं। उदाहरण के लिए वेज का उद्देश्य प्रतिद्वंदी के नीचे पहुंचकर उसकी स्थिरता और नियंत्रण बिगाड़ना है, इसलिए उसकी जमीन से दूरी। अग्रभाग की मजबूती और सीधी दिशा में पकड़ महत्वपूर्ण बनती है। स्पिनर में घूर्णनशील हथियार की ऊर्जा निर्णायक होती है, लेकिन उसी के साथ संरचना पर प्रतिक्रिया बल, असंतुलन, सुरक्षा और हथियार चालू होने तक रोबोट की रक्षा भी जरूरी है। लिफ्टर और फ्लिपर प्रतिद्वंद्वी को उठाने या पलटने पर केंद्रित होते हैं, इसलिए उनका लाभ केवल बल में नहीं, संपर्क बिंदु और सही समय पर निर्भर करता है। पुस्तक का उपयोगी संकेत यह है कि प्रभावी हथियार को विश्वसनीय ड्राइव सिस्टम से अलग नहीं देखा जा सकता। यदि रोबोट प्रतिद्वंद्वी तक सही दिशा से नहीं पहुंचता, तो अत्यधिक शक्तिशाली हथियार भी व्यर्थ हो सकता है। इसी तरह कम ऊंचाई वाला कवच या वेज उपयोगी है, पर फर्श की अनियमितता और मोड़ते समय होने वाली गतियों को भी सहना चाहिए। पाठक को हर विन्यास के लाभ के साथ उसकी सीमाएं समझने का आधार मिलता है। परिणाम स्वरूप रणनीति डिजाइन के बाद जोड़ी गई चीज नहीं रहती, बल्कि शुरुआती ज्यामिति और घटक चयन का हिस्सा बनती है। तीसरा, सामग्री चयन, जोड़ और संरचना की क्षति सहने की क्षमता। कॉम्बैट रोबोट का ढांचा स्थिर मशीन फ्रेम से अलग परिस्थितियों में काम करता है। उसे टक्कर, अचानक रुकावट, हथियार के प्रहार, कंपन और बार बार लगने वाले झटकों को सहना पड़ता है। पुस्तक सामग्री चयन और जोड़ने की विधियों को इस वास्तविकता के संदर्भ में रखती है। किसी सामग्री का केवल मजबूत होना पर्याप्त कसौटी नहीं है। घनत्व, कठोरता, नमनीयता, निर्माण की सुविधा, उपलब्धता और मरम्मत की संभावना भी मायने रखती है। हल्की सामग्री वजन बचा सकती है, किंतु यदि वह स्थानीय प्रहार में जल्दी विकृत हो जाए तो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक भाग और ड्राइव तंत्र खतरे में आ सकते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक भारी सुरक्षा संरचना गति और हथियार क्षमता को दबा सकती है, इसलिए आवश्यक जगह पर सुरक्षा देने और अनावश्यक द्रव्यमान हटाने का संतुलन केंद्रीय है। जोड़, बोल्ट, वेल्डिंग और अन्य फास्टनिंग उपायों पर ध्यान भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। कमजोर जोड़ अक्सर मजबूत प्लेट से पहले विफल हो सकता है। रखरखाव के लिए पहुंच भी संरचनात्मक निर्णय है, क्योंकि प्रतियोगिता के बीच क्षतिग्रस्त पहिया, नियंत्रक या बैटरी को जल्दी बदलना पड़ सकता है। पुस्तक के चित्र और निर्माण उदाहरण इस बात को ठोस बनाते हैं कि संरचना केवल बाहरी कवच नहीं है, वह मोटर, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स और पहियों को एक ऐसी व्यवस्था में बांधती है जो प्रहार के बाद भी नियंत्रित रहे। यह विचार इंजीनियरिंग विश्लेषण को वास्तविक निर्माण अनुशासन से जोड़ता है। चौथा, मोटर, गियरिंग और ड्राइव सिस्टम का व्यावहारिक मिलान। पुस्तक में मोटर और ट्रांसमिशन का विषय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कॉम्बैट रोबोट की उपयोगिता सीधे उसके चलने, धक्का देने, मोड़ने और नियंत्रण वापस पाने से जुड़ी होती है। भ्रष्ट डायरेक्ट करंट मोटरों पर चर्चा का व्यावहारिक आधार यह है कि वे बैटरी से चलती हैं, दिशा बदलना आसान होता है और गति नियंत्रण अपेक्षाकृत सीधा है। फिर भी केवल उच्च शक्ति या उच्च आरपीएम देखकर मोटर चुनना गलत हो सकता है। पहियों तक पहुंचने वाला टॉर्क, गियर अनुपात, रोबोट का वजन, पहियों की पकड़ और मोटर पर आने वाला तापीय तथा विद्युत भार मिलकर परिणाम तय करते हैं। बहुत तेज गियरिंग रोबोट को तेजी दे सकती है, पर धक्का देने की क्षमता घटा सकती है और मोटर को जाम जैसी स्थिति में अत्यधिक करंट खींचने के जोखिम में डाल सकती है। बहुत धीमी गियरिंग मजबूत धक्का दे दी है, लेकिन रोबोट को प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचने योग्य फुर्ती नहीं देती। पुस्तक की इंजीनियरिंग उपयोगिता इसी संतुलन को गणनाओं और घटक संबंधों के रूप में देखने में है। ड्राइव सिस्टम को हथियार से भी अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हथियार की प्रतिक्रिया, बैटरी का भार और द्रव्यमान केंद्र वाहन की दिशा नियंत्रण क्षमता बदलते हैं। विश्वसनीयता भी प्रदर्शन का हिस्सा है। एरिना में रुका हुआ शक्तिशाली रोबोट चल रहे अपेक्षाकृत साधारण रोबोट से कम प्रभावी होता है। यह अध्याय पाठक को विज्ञापित आंकड़ों की बजाय पूरे शक्ति संचरण तंत्र का मूल्यांकन करना सिखाता है। अंत में रेडियो नियंत्रण, विद्युत व्यवस्था और एरिना सुरक्षा की अनिवार्यता। कॉम्बैट रोबोटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स केवल सहायक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ड्राइवर के आदेश, मोटरों की प्रतिक्रिया और सुरक्षित बंद होने की क्षमता सभी इसी पर निर्भर करते हैं। पुस्तक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर, रेडियो इंटरफेस, स्पीड कंट्रोलर, रिले या सोलनॉइड, स्विच, तारों और कनेक्टरों जैसे घटकों की भूमिका को रोबोट संचालन के संदर्भ में रखती है। एक प्रभावी मैकेनिकल डिजाइन तब भी विफल हो सकता है जब कंपन से कनेक्टर ढीला हो, तार किसी घूमते भाग से कट जाए या नियंत्रक अपेक्षित करंट सहन न कर सके। इसीलिए विद्युत मार्ग की योजना में तारों की सुरक्षा, उचित जोड़, घटकों की स्थिति और निरीक्षण की सुविधा आवश्यक है। रेडियो नियंत्रण की विश्वसनीयता खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुकाबला बंद एरिना में तेज विध्वंसक मशीनों के बीच होता है। नियंत्रण खोना केवल रणनीतिक नुकसान नहीं, सुरक्षा जोखिम भी है। पुस्तक का व्यापक संदर्भ यह बताता है कि प्रतियोगिता के नियम, सुरक्षा प्रक्रियाएं और निर्माण विकल्प परस्पर जुड़े हैं। हथियार को चालू या बंद करने की व्यवस्था मुख्य विद्युत कट ऑफ और निरीक्षण योग्य लेआउट जिम्मेदार डिजाइन के अंग है। पाठक के लिए मुख्य शिक्षा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को अंतिम चरण में ठूसना नहीं चाहिए। उसे फ्रेम, बैटरी स्थान, रखरखाव पहुंच और झटके से सुरक्षा के साथ आराम से डिजाइन करना चाहिए। इस समय के दृष्टिकोण से रोबोट केवल चलने वाला उपकरण नहीं, बल्कि नियंत्रित और प्रतियोगिता योग्य प्रणाली बनता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो कॉम्बैट रोबोटिक्स को केवल मनोरंजक मुकाबले के रूप में नहीं, बल्कि सीमित वजन, सीमित स्थान और कठोर क्षति के बीच होने वाली इंजीनियरिंग समस्या के रूप में समझना चाहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स या डिजाइन के विद्यार्थी, नई प्रतियोगिता टीमों के सदस्य और अनुभवी निर्माता सभी इससे अलग स्तर पर लाभ ले सकते हैं। शुरुआती पाठक को रोबोट के प्रकार, घटक और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थित शब्दावली मिलती है। अधिक अनुभवी निर्माता को द्रव्यमान, संरचना, ड्राइव, हथियार और नियंत्रण के बीच समझौते पर विचार करने का उपयोगी ढांचा मिलता है। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल सैद्धांतिक रोबोटिक्स पुस्तक नहीं है और न ही केवल किसी एक मशीन को बनाने की निर्देश पुस्तिका है। रियोबॉट्स टीम के निर्माण अनुभव और बड़ी संख्या में चित्रों के माध्यम से यह एरिना में सत्यापित व्यावहारिकताओं को डिजाइन सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। निर्माण रिपोर्टें पाठक को यह देखने देती है कि अवधारणाएं वास्तविक रोबोटों में कैसे रूप लेती है, फिर भी इसे समय के संदर्भ में पढ़ना उचित है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नियम या उपलब्ध घटक प्रकाशन के बाद बदल चुके हो सकते हैं, इसलिए आधुनिक प्रतियोगिता नियमों और वर्तमान सुरक्षा मानकों की अलग से जांच जरूरी है। इसके बावजूद विश्वसनीयता, मरम्मत योग्यता, संतुलित डिजाइन और सुरक्षा जैसे मूल सिद्धांत स्थायी हैं। इसी कारण यह पुस्तक कॉम्बैट रोबोट बनाने की प्रक्रिया को अलग अलग पुर्जों की खरीद से उठाकर सोच समझकर की गई प्रणाली इंजीनियरिंग तक ले जाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्को एंटोनियो मैग्यूलारो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।